سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین, پروگرام ہے لانگ ڈرائیو اور آج میرے ساتھ ہوں گے رکن شورا حاجی امین اتاری. انشاءاللہ عزوجل آج بھی کہیں کا سفر ہوگا اور باتیں ہوں گی, گفتگو ہوگی, آپ تک پہنچائیں گے نیکی کی دعوت کی نیت سے. اس وقت میں موجود ہوں فیضان مدینہ کی جو پہلے والی عمارت ہے, تو اسے محراب کی طرف جو متصل ایریا ہے ماشاءاللہ وہ بھی فیضان مدینہ کا حصہ بن چکا ہے. تو یہاں پر آفیسز ہیں, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, کسی زمانے میں یہ جب پرانی سبزی منڈی ہوتی تھی تو گودام وغیرہ تھے, ان کے آفیسز تھے. اب یہ مدنی مرکز نے پرچیز کر لی ہے جگہ, تو رکن شورا کا جو آفیس ہے وہ یہیں پر ہے, تو ان کو جا کر لیتے ہیں ساتھ, پھر انشاءاللہ اپنا ٹریول شروع کریں گے.
میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری خود آئے یا اللہ, ہو تیرے واسطے پوری خود آئے یا اللہ.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ,
صلاۃ و سلام علیک
وعلی
آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
سبحان الذی سخر لنا
ھذا
وما کنا
له
مقرنین
وانا
الی
ربنا
لمنقلبون.
لا
الہ الا
اللہ
محمد رسول.
محمد رسول.
اچھا, امیر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ایک چیز سیکھنے کو ملی ہے سر بھائی, کہ ایک مرتبہ امیر سنت گئے, آستانے پہ ہی تھے ہم لوگ, ہم سے تشریف لائے نا, کچھ ہم اسلام بھیج دے دو تین, تو کہا کہ گاڑی میں بیٹھتا ہے. اچھا, ہم تو خوش ہو گئے, گاڑی میں بیٹھ گئے. تو گاڑی جب اسٹارٹ ہوئی تو پھر نیتیں کی. اچھا, اس کو سیکھنے کو ملا کہ بازار سے گزروں گا تو دعا پڑھوں گا, اور مسجد دیکھوں گا تو درود پاک پڑھوں گا, کفر کی نشانی دیکھوں گا تو دعا پڑھوں گا, اس طرح سے نیتیں کی. مریض کی عادت کروں گا, اور جب وہاں جاؤں گا تو سلام کروں گا, مسافہ کروں گا, زیادہ دیر اس کو پریشان نہیں کروں گا, یوں کر کے. اچھا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں. بہرحال ہم نے بھی چونکہ نیتیں ہو رہی تھی تو ہم نے بھی نیتیں کی. اب جب سفر ہوا نا تو پھر بازار سے گزرے ہیں, تو کہا بھائی بازار کی دعا پڑھا, تو خیر وہ پھر خود ہی پڑھائی, پھر مسجد دیکھ کے درشی. تو بازار میں گزرتے ہوئے میں جب بازار کی دعا پڑھتا ہے تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں, اور درود شریف مسجد دیکھ کے درود شریف پڑھنا مستحب ہے. تو یوں مطلب ایک وہ ہوا کہ یار یہ سفر بھی ہمارا بہت سارا نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے.
بس فرق ہے نا کہ سفر کس کے ساتھ ہے,
بس,
اور ہم سفر کون ہونا چاہیے. جب بھی بندہ نکلتا ہے تو یا تو کسی کام سے نکلتا ہے یا پھر گھومنے پھرنے کے لیے. اب جب کام سے بندہ نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ ساتھ وہ ہوگا جو اس کام سے متعلق ہوگا, آفیشیل اگر کہیں جا رہا ہے, اور اگر ویسے پرسنل سفر ہے تو اس کو لے گا جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے, جس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے. تو اب یہاں پر کوشچن آ جاتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کس کے ساتھ ہے, ذہنی ہم آہنگی کس کے ساتھ ہے. تو پھر وہی ساتھ ہوگا سفر میں, اور دعوت اسلامی کے ماحول میں تو سفر خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اور ماشاءاللہ امیر سنت ہی کی تربیت ہے جیسے آپ نے فرمایا, تو بڑا یونیک ہے سفر. اگر آپ نے کبھی اس طرح دینی ماحول میں رہتے ہوئے سفر نہیں کیا تو کبھی کر کے دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور ساتھ میں اگر کوئی ذمہ دار ہیں, کوئی سینئر اسلامی بھائی ہیں یا کوئی عالم دین ہے, تو پھر کیا ہی بات ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے.
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات پھر کمپیریزن ہوتا ہے, میں 1990 میں داؤد اسلامی کے جو اسلامی بھائی تھے ان کے ساتھ پہلی دفعہ لاہور سفر ہوا تھا. اچھا, اتفاق سے 5-6 مہینے پہلے ہم کچھ دوست پاکستان ٹور پہ ہو کر آئے تھے. اچھا, اس ٹور میں اور اس سفر میں वो दोनों में यानी बाजार दोनों टूर ही थे
जी,
वो दोनों में फर्क लगा।
और कराची से बाहर थे, लंबे यानी
लंबे सफर था। इस सफर में पूरी ट्रेन थी, वो बाजमात नमाजों का एहतमाम, फिर वो वजू का एहतमाम, तो एक दूसरे का ख्याल रखना, जगह देना, कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो एक दूसरे को ऑफर करना, तो वो जो चीज़ें होती ना, अब इंसान कंपैरिजन करता है कि यार ये जो सफ़र है तो उसमें इतना इतना स्वभाव है यार
जी,
यानी सफ़र तो दोनों सेम सेम थे
ऐसा ही है,
लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिलता है
माशाल्लाह। नाज़रीन इस वक्त हम गुजर रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड से, आपने मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का जब भी एड्रेस देखा होगा तो उसमें यूनिवर्सिटी रोड लिखा होता है, तो गुजर रहे हैं। और तो अब ये बारिश का समय है और कराची में बारिश जो है वो कभी कभी होती है, कई नाज़रीन ऐसे होंगे कि जिनके लिए बड़ी नॉर्मल बात होगी, लेकिन यहाँ के रहने वालों के लिए अच्छा, इसमें भी फिर कैटेगरीज हैं कि बाज़ों के लिए खुशी का बाइस है, बाज़ों के लिए आजमाइश का बाइस है। तो ये इरशाद फरमाइए कि माशाल्लाह आपने एक वक्त गुजारा कराची में और एक तवील वक्त गुजारा, दहाइयाँ हम कह सकते हैं, तो इसके हवाले से कोई यादें हैं बारिश के हवाले से?
जी, बारिशें आम तौर पर तो कराची वाले तो इंतज़ार ही करते रहते हैं बारिश हो,
ऐसा ही है
कि बारिश हो, लेकिन जो आपने कहा तो एक जो ज़िंदगी का जो सफ़र हुआ है अप्रोक्स तकरीबन 85 से 2025, 40 साल मुझे तकरीबन यहाँ हो गए कराची में, तब इस 40 साल में जो है वो वाकई ऐसा भी देखा कि पूरा साल ही बारिश नहीं हुई, एक बूंद नहीं पड़ी, और गालिबा 92-93 की बात है तो उस टाइम बारिश हुई थी, वो एक स्पेल आया था।
अच्छा,
और वो ऐसी ज़िंदगी की मैंने बारिश देखी कराची में,
अल्लाह
कि वाकई वो मतलब उसने हमारे मशहूर डेंस हॉल है यानी बंदर रोड के रहते हैं, तो वो आम तौर पर वहाँ इतना पानी जमा नहीं होता है,
सही,
यानी दुकानें डूब गई और बहुत कुछ वहाँ नुकसान भी हुआ, मगर वो बारिशें जो है ना वो एक कभी 8-10 दिन चली थी।
अल्लाह,
और फिर जब इस तरह की बारिश होती तो हमारे यहाँ कराची में एक मशहूर था कि यार इससे हमारे जो जो नाले हैं ना जिसमें पानी बरसाती नाले, इनकी सफाइयाँ होती है, तो इस बहाने जो है ना वो सारे क्लियर हो जाते हैं और वो हमारा ड्रेन सिस्टम जो है ना कुछ अर्से के लिए लॉक होता है, लेकिन चूंकि प्रेशर होता है तो वो क्लियर हो जाता है। तो लेकिन फिर बहरहाल जो इसके इंतज़ामिया की जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं और जो भी एक ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर इतना बड़ा शहर है, सफाई के भी मसाइल पैदा हो जाते हैं, कि सबसे बड़ी बात असल भाई जो इस तरह के माहौल में जो गरीब तबका है, अब ज़ाहिर हर एक की तामीरात की वो कंडीशन नहीं होती,
ऐसा ही,
तो उसमें उनकी आजमाइशें और उनके मुतालिक मसाइल, और दूसरी आजमाइश ये क्योंकि यहाँ बाइक्स ज़्यादा हैं तो वो जो ड्राइविंग के जो हादसा, फिर उनका गिरना, फिर सारे कई चीज़ें नाकिस घर में भी हो जाती हैं, तो इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम, फिर करंट लगने के मसाइल,
एहतियात बहरहाल करनी चाहिए, एहतियात करें, कम निकलें, ज़रूरत के मुताबिक निकलें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा।
फिर इसमें एक और बात असल में ऐड ज़रूर करें कि ये जो घर के जो छोटे छोटे मेंटेनेंस के काम होते हैं ना, ये भी बस अवकात बहुत ज़्यादा हमें मतलब वो मुतासर कर देते हैं,
ऐसा ही है,
यानी जो तार निकला हुआ है, अब हमारे यहाँ जो बिल्डिंगे हैं ना, अल्लाह अकबर, यकीन माने बाज बिल्डिंगों में तो डर लगता है कि पता नहीं अभी धमाका होगा क्या, यानी जो कि वो इलेक्ट्रिक का जो एक दूसरे से वो कनेक्शन जोड़ने का, अच्छा फिर वही बात है कि एक्सपर्ट्स लोगों से काम नहीं कराना है, हर आदमी कारीगर बन जाता है ऐसे मौके पर, तो उन्होंने कभी किसका तार किसका जोड़ना है, तो वो बारिशें, फिर उसमें मैचिंग, फिर उसमें कहीं इलेक्ट्रिक लोहे से टच हुआ तो फिर उसमें करंट आया। मुझे याद है कि कई ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि बारिश का पानी खड़ा हुआ है, अब पता नहीं है कहीं से तार गिर गया, पूरे पानी में करंट आ गया, अब वो गुजरने वाला मोटरसाइकिल वाला वहीं लेट गया, कोई पैदल चलने वाला करंट की जाल में आके, वो ये दुआ जो घर से निकलने से पहले की जो दुआ तालीम दी जाती है कि बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, ये दुआ जो है वो पढ़नी चाहिए ताकि इसकी जो नागहानी आफतों मुसीबतों से जो बचने के फसाइल भया।
अच्छा, कुछ इसमें फ़र्क महसूस होता है आपको कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, इसको कैसे मेजर करेंगे? ज़ाहिर है कमज़ोरियों पर कलाम होना भी चाहिए, एक तरगीब भी मिलती है बचने की, और डाइवर्सिटी भी होती है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आप देखते हैं कि मुआशरे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज है।
पॉजिटिव चेंज तो ऐसा है असद भाई, आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि भाई वगैरह हम बैठे थे ना जिस अरसे पहले, तो ऐसे ही कुछ घरेलू खानदान के बीच बातें शुरू हो गई। तो मैंने कहा कभी अच्छा, तो इत्तेफाक से वो भाई जो हमारे सबसे छोटे हैं वो खुद भी माशाल्लाह हाफिज हैं, उनके बेटे ने हिफ्ज किया, वो घर में खुशी होती है तो ज़ाहिर वो सब जमा हुए थे। तो मैंने भाइयों को सब पूछा यार ज़रा हिसाब तो लगाओ हमारे खानदान में हाफिज कितने हो गए।
अच्छा
तो फिर हिसाब लगाया, तो वो 12वां हाफिज हमारे खानदान में था
अच्छा माशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म नूर है, तो वो जो एक रोशनी है वो महसूस होती है कि फिर मालूमात और इल्म और अमल, तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्क तो देखा है।
अच्छी बात है, और फर्क पड़ता है बात करने से समझाने से। ये जो बात है ना कि घर की मेंटेनेंस क्या क्या के, कई लोगों को देखा है कि यही बातें मदरी चैनल पे सुन सुन के लोग कहीं ना कहीं वो घर में कर रहे होते हैं कि यार देखो ये हमें समझाया गया था तो ये हम इस पे करें। और नाज़रीन भी ये बात जहन में रखें कि जिन कौमों की मिसालें दी जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से वैसी ही थी, उनके अंदर भी कुछ लोग ऐसे पैदा हुए होंगे जिन्होंने समझाया होगा, बातचीत चली होगी और दहाइयाँ लग जाती हैं एक टीम को डेवलप होने में, कल्चर को चेंज होने में। तो हमें अपना हिस्सा मिलाते रहना चाहिए, हमें अपनी बात जो है वो करते रहना चाहिए। अजब आपने जैसे अभी तذکرہ किया कि 12 हाफिज माशाल्लाह, तो आपका मैंने देखा है कुछ अरसा आपके मस्जिद में जुम्मे के हवाले से आना जाना था, तो आपका ना फैमिली में एक इन्फ्लुएंस है, जैसे एक होता है खानदान का एक बड़ा होता है जिसकी चलती है, तो मैं चाहूंगा कि आज कुछ रिश्तों के हवाले से, कल्चर के हवाले से, खानदान के हवाले से हम डिस्कस करें और कुछ कंपैरेटिव डिस्कशन करें। एक जैसे के पहलू मेरे जहन में आता है, बाकी आप इसको आगे बढ़ाइएगा, कि हमारे बड़ों में एक बड़ी प्यारी खूबी ये देखी जाती है कि खानदान में कोई भी कमी बेशी होती थी तो वो टूटने नहीं देते थे। अच्छा न्यू जनरेशन में जज्बातियत ज्यादा नजर आती है। अच्छा वो कुछ भी हो गया, यानी कि बड़े से बड़ा झगड़ा हो गया, लेकिन हम अगर थोड़ा गौर करते हैं तो एंड ऑफ द डे कोई ना कोई आगे बढ़कर यानी कि कुंबे को जोड़ के रखना, ये हमारे बड़ों के अंदर एक खूबी जो है वो नजर आती है, क्या फरमाइए?
ये तो देखें अगर बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले तो इसकी अहमियत को अगर हम समझेंगे ना
माशाल्लाह, ये भी साथ साथ अगर आप
माशाल्लाह कि अगर हम इसको भी अगर देखेंगे कि क्या आया इसकी जरूरत है या नहीं है
जी,
यानी एक तो होता है ना कि इंसान बिल्कुल कहे कि यार मुझे कोई जरूरत थी, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी से ताल्लुक नहीं रखना चाहता हूँ। तो अव्वलन तो अगर दुनियावी तौर पर भी देखा जाए तो ये बात तो हकीकत है कि जो ये अकेले रहते हैं, आप जरा उन मुल्कों का हाल देख, यानी एक मैं मुल्क का नाम नहीं लेता हूँ लेकिन चूंकि अपने इस्लाम में जाते आते रहते हैं तो बताते हैं कि यार ये जो मुल्क है ना उनमें अगर ये बुढ़ापे की तो कोई लाइफ ही नहीं है, खानदान की तो कोई लाइफ ही नहीं है, यानी वहाँ पर ये जो शऊर है ना कि सही लोग परेशान हो गए हैं यार, ये तो शादी के बाद कुछ इसके कोई ताल्लुक ही नहीं रहता, कौन माँ कौन बाप, यानी वो जो हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो अभी भी परदादा तो मामू तो खालू तो ये रिश्तों को भी महसूस किया जाता है
जी,
तो जब जारे बिगाड़ आता है तो बढ़ते बढ़ते तो फिर ये माँ बाप तक को भी फारे फारे हो गए,
अल्लाह
यानी वहां पर माँ बाप की कोई लाइफ नहीं है और सबसे ज्यादा खुदकुशियों का रुझान है। तो बाकायदा उन्होंने तो ऐसी मशीनें बना रखी हैं कि उसमें बच्चे को लिटा देते हैं कि भाई आप सुकून से मर जाओ, और वो खुशी खुशी आकर वो गया ना मुझे मर जाते हैं। तो आप खुद सोचें कि गौर करें कि ये यहाँ तक कब पहुंचे, ये
खराबी कहीं और
खराबी कहीं और से शुरू हुई ना। तो लेकिन अगर हम इस्लाम की तालीमात लेते हैं तो सिले रहमी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, तो ये जो ताल्लुक होता है ना, ये ताल्लुक हमारी बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। अगरचे हम कहेंगे नहीं यार ये तो फिर ये भी देखना पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन असल में ये थोड़ा देखना होगा,
थोड़ा फायदा ज्यादा है,
फायदा ज्यादा है, बीज डालने तो चंद ही डालते हैं लेकिन फसलें बहुत जबरदस्त होती है, तो इसका जो एक आउटपुट है ना वो बहुत अच्छा है।
क्या वजह देखते हैं क्यों ऐसा होता है? और क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसको खास तौर पर हमारे नौजवानों को, जाहिर है जो उम्र गुजार चुके तो वो तो एक जिंदगी का हिस्सा गुजार चुके, लेकिन क्या ऐसी चीजें आप फील करते हैं कि हमारे कल्चर में होनी चाहिए? अच्छा, अगर कुछ आपने बेहतर चीजें देखी हैं तो वो भी एड्रेस हो सकती हैं।
देखें, बहुत अच्छी मिसाल मेरा शुरू से ही सुनी थी एक फैमिली की, कि वालदा भाई ये सब अलग अलग रहते, मगर सारे भाई रोजाना फिक्स टाइम पे अम्मी के पास जमा होते।
अच्छा, अशारो।
अब ये जो चीज है ना, ये सिर्फ वही बता सकता है जो इसके बेनिफिट देखता है।
सही
यानी मैं अगर ये नहीं करता हूं ना, मुझे इसकी फीलिंग नहीं आई,
सही
लेकिन अगर मैं करता हूं ना, जो कर रहा है ना, उससे पूछे कि यार ये क्या, तू बेवकूफ आते हैं यार, क्यों जमा होते हो यार,
सही
क्यों मिलते हो रोज जाकर, ये कि आपका तो पेट्रोल खर्च हो रहा है, आपका तो टाइम जाया हो रहा है। ये टाइम जाया नहीं हो रहा है, ये टाइम को बहुत जबरदस्त ये इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ये तो तहकीक में भी है और किताबों में लिखा है कि माँ बाप का जो एक रूहानी ताल्लुक होता है, बल्कि साइंटिफिक भी ऐसे मामला बयान किए जाते हैं कि माँ बाप जो है वो जो औलाद के साथ जिनका जो ताल्लुक होता है ना, तो औलाद अगरचे मीलों दूर भी हो, तब भी उनके वो जो
जज्बात
बरकत और जज्बात एहसास आते हैं ना, वो औलाद पे इफेक्ट करते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ यकीनन अगर हमें लेनी है, कोई सादा सी मिसाल है कि अगर मिसाल कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, तो अगर मेरा सगा भाई ना हो तो मेरे जो है ना जज्बात कुछ और ही हो जाते। तो मदनी चलन में मैंने एक वाक्या सुना था कि वो एक गांव में एक बड़ा अजीब वाक्या हो गया। वाक्या ये हुआ कि गांव वाले कुएं से पानी भरते थे। अच्छा, वो जब पानी भरते थे और गुजारा हो रहा था, तो अचानक एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो भी बाल्टी डालता, तो वो बाल्टी जब वापस खींचता तो रस्सी आती, बाल्टी गायब।
अच्छा,
अब
बाल्टी कुएं में।
बाल्टी कुएं में, अब सब परेशान। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो गया कि भाई वो जिन्हों का बसेरा हो गया है, और जिन्नात जो है ना, वो जो बाल्टी आती है ना, उसको वो अंदर ही खोल लेते हैं और आने नहीं दे रहे हैं।
चाचा कंटिन्यू रखिएगा। इत्तेफाक है, जिन्नात की बात चली, जिस हम एरिया से गुजर रहे हैं, एरिया का नाम नहीं लेता, तो यहाँ भी मशहूर था कि जिन्नात का मसला है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो कुछ अरसे के बाद पता लगा वो रोड में टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो बाज़ औक़ात चीज़ें मशहूर हो जाती हैं। हम अभी जा रहे हैं शाहरे फैसल की तरफ, बढ़ रहे हैं, कराची की मशहूर शाहरा है, और वहाँ से फिर हम एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं उसको, वहाँ पर इंशाल्लाह चलेंगे। और कुछ मनाजिर आप देख रहे होंगे, इस वक्त बारिश की वजह से काफ़ी जो है वो पानी भी जमा है और लोग अपने अपने अंदाज पर गुजर रहे हैं। जैसे अब कुएं में बकौल लोगों के,
तो बाल्टी अब खाली आ रही है, सब परेशान। अब कोई करीब भी नहीं जा रहा कि भाई अब क्या करें, कोई जिन मुसल्लत ना हो जाए। एक नौजवान खड़ा हो क्यों, अच्छा मैं उतरता हूँ,
अच्छा
लेकिन आप लोग मुझे पकड़ के रखना। लेकिन सुनो, ये रस्सी पकड़ने वालों में ना मेरा सगा भाई भी होना चाहिए।
अच्छा
चल, लोगों ने कहा भाई क्यों, कहा सगा भाई भी होना चाहिए।
सही।
अब वो हो गए भाई, उन्होंने रस्सी बांधी और नीचे उतरा। अब नीचे उतरा तो सबने पकड़ी थी रस्सी। अब जैसे ही नीचे उतरा तो उसने तो गद्दी बंदर देखा, बाल्टियां बाल्टियां तो थी, लेकिन उस कुएं में एक बंदर था, और वो बंदर की शरारत थी, वो जो भी बाल्टी उधर निकलती वो खोल देता था रस्सी। अब इसने इधर उधर टटोला, एक गुड़ का टुकड़ा उसको मिला अपनी जेब में।
अच्छा,
उसने बंदर को गुड़ दिखलाया, बंदर तो हनुस हो गया, बंदर को प्यार व्यार करके कंधे पे बिठा लिया। अब रस्सी खींची के भाई खींचो ऊपर। अब लोगों ने रस्सी खींचना शुरू की। अब जैसे रस्सी खींची वो झांका, तो अब बंदा तो नजर नहीं आ रहा था, बंदर नजर आ रहा था। अब ये समझे कि भूत आ रहा है।
ओहो,
अब वो शोर मचा, भूत आया भूत आया, तो सब एक एक करके छोड़ के भाग रहे थे। वो जो भाई था ना,
अल्लाह,
उसने पकड़ के रखी।
क्या बात।
अब वो अकेला अकेला खींचता रहा, ये ऊपर आता रहा। जैसे ऊपर आए तो सबसे पहले तो बंदर उठ के भाग निकल के भागा, फिर ये निकला, उसको दूर से लोग देख रहे थे। अब वो जब इसको निकलता हुआ देखा तो सब एक एक करके बाहर आए। उसने कंडीशन बताई, उसने कहा यार शाबाश शाबाश, अगर देखा मैंने इसलिए कहा था मेरे भाई को भी रखना,
अल्लाह,
तुम सब छोड़ के तो भाग गए। ये मेरे भाई ने देखो, मेरे अपने खून का रिश्ता,
बिल्कुल
तो वो जो रिश्तेदारियां है ना,
बिल्कुल,
ये शायद अगर,
और ये पैसों से नहीं आ सकते,
पैसों से
ये जो अल्लाह ने रिश्ता बनाया है। और बचपन में तकरीबन लोगों की यादें होंगी कि मिसाल है स्कूल में या मोहल्ले में लड़ाई हो गई तो भाई अगर पूछता नहीं था कि भाई कसूर किसका है, उसने भाई का साथ ही देना है ना, यानी वो जो उसकी जज्बाती वाबस्तगी है भाई के साथ। इसी तरह बहनों के साथ और जो करीबी रिश्तेदार होते हैं तो उनके साथ एक अलग ही ताल्लुक होता है।
और लेकिन इसमें अगर असल भाई अगर थोड़ा सा देखा जाए ना कि हालात ऐसे क्यों हो गए, ठीक है, हालात दो तरफा ही होते हैं। बाद औकात जो है ना ये खुद अपने ही हाथों के हैं करतूत, कि मैंने ही अपने बड़े भाई की इज्जत नहीं की, मैंने ही अपने बहनों को आजकल देखा ही नहीं, मैं ही अपने माँ बाप से बदतमीजी करता रहा, मैंने ही अपने बच्चों को मिलवाना ही छोड़ दिया कि कौन फूफी कौन मामू। तो आज अगर कुछ ऐसे हालात हो गए मेरे, थोड़ा सा मेरा ख्याल है मदनी चैनल के नाज़रीन इसको थोड़ा सा स्टडी कर ले, अब भी जब तक जिंदा है ना अब तक अभी भी कुछ गया नहीं है, अगर कोई ऐसी नाइतफाकी हो गई है या चलो भाई ने कुछ किया है, आप बढ़े आप आगे बढ़। जैसा आपने कहा ना कि वो जो दौर था ना कि जिसमें मिलाप होता था, ये मिलाप कराने वाले भी एक तबका होता था जो खानदान में बहुत बड़ी नेमत थी
जी,
और आज बदकिस्मती से इस चीज में ना यार हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते,
क्यों नहीं? कुछ सुना है ना ऐसा कोई ऐसा वाकया? यानी वाकया तो बहुत होंगे लेकिन बाजू का सुलह करवा के बाद में जब सुलह हो जाती है और जो लड़ रहे थे उनको एक साथ देखकर वो खानदान वाले हैं या दोस्त हैं तो दिल में जो खुशी होती है वो भी तो एक फीलिंग्स है। सबसे बड़ा वाक्य सुना दे जो आपने सुलह करवाई, बिफोर भी और आफ्टर भी।
हमारी तो कोशिश रही है दावत इस्लाम
अल्हम्दुलिल्लाह
कि जब से इसके फजाइल सुने हैं, सच्ची बात है कि इस मामले में जहां तक भी हो सकता है ना अपना किरदार अदा किया है। लेकिन बाज़ औक़ात अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि ऐसे केस आए लेकिन वो है ना कि जब हमारे ही बीच में जो कुछ बड़े थे नादान उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया।
सही,
तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वाक़यात हुए हैं कि बिजनेस में किसी हवाले से कोई पार्टनरशिप थी या कुछ था मामला, तो उसमें फिर वही बात होती कि थोड़ा अलग अलग समझाया जाए कि यार बजाय तुम्हारा ये नुकसान है लेकिन अगर फायदा हो रहा है तो भाई को ही हो रहा है ना।
सही,
थोड़ा थोड़ा हिम्मत कर जाओ। और माशाल्लाह जिन्होंने इस तरह के अमल किए ना, अगर थोड़ी सी तवज्जो दे देंगे ना नाजरीन भी, तो शायद उनको फलता फूलता ही देखा है
अल्लाह।
यानी आप अगर किसी से भी कोई अच्छा सलूक करेंगे ना, इसका जो आपको आउटपुट मिलेगा ना वो अच्छा ही मिलेगा। क्यों? कि जिसके साथ अच्छा अमल होता है ना तो सामने वाला एक दुआ देता है ना, अल्लाह तेरा भला करे,
बेशक
है। और ये जब दुआ मिलती है ना फायदा होता है। अच्छा, फिर इसमें जो खासकर आजकल जो रिश्तेदारियों में शादी हो गई उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो अब नौजवान शौहर है तो वो चौराहे पे खड़ा हो जाता है कि मैं क्या करूं, बेगम का साथ दूं, माँ का साथ दूं, खानदान का साथ दूं, क्या करूं? तो उसमें थोड़ा सा कहा जाता है कि भाई ये घर का मामला है, घर वालों को डील करने दे, तू करेगा तो किसी एक की भी फेवर करेगा और दूसरे से बिगड़ेगी तो बात हो जाएगी ख़राब। तो ये तो सीखा यही है कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो उनके सिपुर्द ही रखा जाए, तो इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्दी जो है ना वो आसानी मिल जाती है। क्योंकि होता यही है असद भाई कि अगर कभी किसी से भी नाइतफाकी हो जाती है ना तो बाज़ औक़ात हमारे समझाना, चूँकि हम आउटसाइडर होते हैं, ये जो आपस में जिनका ताल्लुक है ना ये करीबी लोग हैं, इन्होंने एक प्लेट में खाया है, एक साथ रहे हैं, तो वो कई एक जन प्लस माइनस को जानते हैं, इनको सिर्फ मिला दे। बल्कि एक जगह पढ़ा था मैंने, ये दो भाई थे, इनका बड़ा बिजनेस था और उस बिजनेस में माशाल्लाह ये बहुत फल फूल रहे थे, तो अचानक दोनों भाइयों में कोई इख्तलाफ हो गया।
अच्छा
अच्छा, फिर बाज़ औक़ात इसमें कुछ शरारती लोग भी होते हैं जो
किरदार अदा
करते हैं बिगाड़ने का,
नेगेटिव,
तो वो उन्होंने कुछ किरदार अदा किया, कान भरे एक दूसरे के, यहाँ तक इतनी नफरतें पैदा हो गई कि दोनों के घर बराबर बराबर में थे, बीच में ना एक वो एक गैप था। तो बड़े भाई ने क्या किया, बड़े भाई ने बुलाकर एक को कहा कि भाई ये जो ना बीच में इसमें खड्डा कर दो ताकि कोई भी इधर आ जा ना सके, उसमें पानी बहा दो। अब इस तरह से उसने करके और दीवार खड़ी कर दी। तो दूसरे ने अपना आदमी बुलाया, कि अब दीवार खड़ी कर दो, मैं इसका घर भी देखना नहीं चाहता हूँ। अब वो दीवार खड़ी करने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि सीमेंट की नहीं, तुम लकड़ी का पार्टीशन करवा, कारपेंटर को बुलाया। अब कारपेंटर को बुलाया तो कारपेंटर ने जब मामला देखा और उसके जज्बात भी देखे, उसने सामान लिखवाया कि भाई सामान मंगवा ले, मैं रात भर काम करूँगा, दिन में काम नहीं करूँगा। ने कहा कोई मसला नहीं है। उसने सामान मंगवा दिया, सामान मंगवा कर उस और उसके हाथ में काम शुरू हो गया। उसने देखा काम शुरू हो गया, अब ये सो गया। अब सुबह जब उठा तो बड़ा अजीब मंजर था, क्या देखा कि दीवार तो नजर ही नहीं आई उसको। उसने कहा सारी रात तो खट 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 आवाजें तो आ रही थी, काम क्या कर रहा था। अब बाहर निकल जब के देखा ना तो उसने कारपेंटर ने क्या किया था, दीवार की बजाय उसने एक पुल बना दिया था।
अच्छा, उसी लकड़ी से
उसने पुल बनाया। अब जैसे ही पुल नजर आया तो वो करीब गया। अच्छा, वहां से दूसरा भाई जो वो भी पुल के किनारे पर आकर खड़ा हुआ फैमिली के साथ, ये क्या बनाए। अब दोनों भाइयों की जब ये मोहब्बत वाली नजरें मिली ना, बेसाख्ता वही
जी
अपना ये मोहब्बत उसने ऊद किया ना, और वो भाई इधर से जड़ा, ये भाई इधर से जड़ा, और दोनों उस पुल पर आकर मिल गए, खानदान में मिल गए। अच्छा, पीछे मुड़कर देखा तो कारपेंटर अपना सामान बांध रहा था। अब वो उसके पास गया, दोनों गले मिल के कहा कि तुम हमारे मोहसिन हो तो हमारे यहाँ खाना खाओ। कह नहीं 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 मैं जा रहा हूँ। कह क्या, रुको हमारे यहाँ ठहर जाओ। कहने नहीं, ऐसे बहुत सारे पुल बना रहे
हैं।
तो अब ऐसे जो लोग हो ना, ये माशरे को आगे बढ़ाएंगे, खानदानों को मिलाएंगे। और वो है ना, तू जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया है। तो अगर वाकई अंदाज इख्तियार किया जाए तो आज ऐसा है, आज भी सुलह सफाइयाँ हो सकती है, मोहब्बतें अब भी कायम हो सकती।
इसमें एक चीज जो मैं महसूस करता हूँ, जो हमें अपनी गुफ्तगू में भी उसका ख्याल रखना चाहिए, पहली बात तो ये है कि कोशिश यही है कि जारे के झगड़ा ना हो। चलो, एक इंसान है, तकाजा है बशरियत का, झगड़ा हो गया, कोई ऐसी बातचीत हो गई, तो बातों का ऐसी नादानी हो जाती है, ऐसे जुमले जुबान से निकलते हैं कि बाद में सुलह भी हो जाए ना तो उसका जख्म बड़ा गहरा होता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जुबान पर हमारी कंट्रोल रहे, ये जो कह देते हैं ना कि यार आज के बाद बस खत्म, मेरी मैयत पर मत आना, तो ये जो जुमले हैं ये बाद वक्त लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान का बाइस होते हैं।
हदीस भी है ना, ये चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो, उम्र में इजाफा हो, उसले रहमी करे
जी।
तो ये जो आपके जो आपने जो मौजू लिया है ना, ये बहुत वसी है।
अच्छा, इसमें करने वाले को, जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, माशाल्लाह आप निगरान भी हैं और तंजीमी तौर पर भी जा रहे हैं, इस्लामी भाइयों में नाराजगी और कमी बेशी हो जाती है, तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं ऐसा हो जाऊं कि मेरी वजह से सुलह हो, तो मेरे अंदर क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए कि मैं ये करवा भी। बाजों का तो करवाने वाला किसी की पार्टी बन जाता है, अच्छा वो झगड़े में शामिल हो जाता है।
ये तो उसूल भी यही है ना, किसी की फेवर नहीं करेंगे।
सही है।
और फेवर और इसका जो बहुत अच्छा अंदाज जो हमने बड़ों से सीखा है ना, वो ये कि फरीकैन की अलग अलग सुने।
अच्छा,
एक तो होता ना पहले ही बिठा दिया, वो बमबारियां कर रही दूसरे पर, फरीकैन की अलग अलग सुनो, और अफवो दरगुजर के, यानी माफ करने के और सुलह सफाई करने के फजाइल में हक, और उसको थोड़ा सा मेंटली तौर पर राजी कर ले कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे साथ ज्यादती हुई है, इंशाल्लाह माफी भी मांगेगा, और लेकिन वो माफी मांगे तो तू भी थोड़ा दिल बड़ा कर लेगा। अब ये जो हम अंदाज इख्तियार करते थे कि एक दूसरे के साथ सुलह सफाई करानी है तो फजाइल सुनाएं, पहले उसका पेट हल्का कर ले कि भाई इसने जो सुना रहा था ना, अच्छा हमें भी अंदाजा हो जाता है कि भाई वो पिस्टल लगा कर कि क्या पोजिशन है। अब दूसरा जो है उसको भी सुना जाए और उससे भी हमदर्दी का इजहार किया जाए कि भाई मैं तेरे साथ हूँ और इंशाल्लाह बात करेंगे। अब दोनों को जब हम ये ज़हनी तौर पे तैयार करके बिठाएंगे ना,
सही,
आम तौर पे देखा है कि इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने आ गए।
स्टेशन है कराची, माशाल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए, इसकी रोशनियों को और इसकी आबादी को और इसकी जो एक रौनक है बहाल रहे, बहुत बड़ा सिटी है और इसके चार पांच स्टेशन हैं शहर के अंदर, जब ट्रेन बाहर से आती है तो 3-4-5 इसके स्टॉप्स कमोबेश होते हैं, उनमें से एक है। और हमारी दाई जानिब जो एरिया है शाह फैसल कॉलोनी है, और कह सकते हैं कराची की एक मिडिल क्लास आबादी है, ना बहुत ज़्यादा गरीब है ना ये डीएचए की तरह बहुत अमीर हैं, लेकिन कुछ ऐसी इसकी खसूसियात है इस इलाके की। एक तो माशाल्लाह आशिकाने रसूल का एक एरिया है, और रबीउल अव्वल के अंदर जो कराची सजता है और उनमें जो चंद नुमायाँ इलाके होते हैं उनमें से एक
बहुत नुमायाँ
ये माशाल्लाह है। और पिछले चंद सालों में तो एक वक्त था खारादर की कुछ मखसूस जो है वो स्ट्रीट्स थी वही पॉपुलर होती थी और मखसूस बिल्डिंग थी। यूँ कहिए कि चरागान देखने हम भी जब कराची आए तो खारादर मीठादर ये एरिया ओल्ड सिटी एरिया समझे। अब वो माशाल्लाह बढ़ते 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 तो अब कराची में बहुत सारे इलाके हैं। तो रबीउन नूर के हवाले से एक इसका रेफरेंस है। फिर जब काफले हमारे सफ़र करना शुरू हुए तो इस एरिए के बाद इस्लामी भाई बड़े नुमायाँ रहे और काफलों में कारकर्दगी जो है उनकी बड़ी शानदार रही, आपको तो सब याद ही होगा। और उल्टे हाथ पर जो है ये ऑलमोस्ट एयरपोर्ट का एरिया शुरू होने वाला है और इसकी भी एक तारीख है। ओल्ड एयरपोर्ट था वो, फिर हज के लिए इस्तेमाल होता रहा, हज टर्मिनल के नाम से एक ज़माने तक रहा, लेकिन आजकल तो मेरे ख्याल है मेन एयरपोर्ट ही ओनली इस्तेमाल होता है। तो लेकिन वो एरिया है एयरपोर्ट के अतराफ की आबादी हैं बहुत सारी, और ये एयरपोर्ट रोड मेन रोड है पीछे ये सदर की जानी इसका जो कनेक्टिविटी बनती है और बड़ा मसरूफ जो है ये शाहरा है, काफ़ी आगे तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है। असल में जब हम चले थे तो आयशा साहब ने फरमाया कि एक यादत भी कर लेंगे, किसी से मुलाकात भी कर लेंगे, चाय भी वहाँ और अच्छी वाली चाय पिलाएंगे आज माशाल्लाह, चलें जी वो भी इंजॉय करेंगे। बारिश भी हो रही है और रास्ते में बाइकों पे कई लोग रुके हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पर किसी की हेल्प भी हो रही थी। अच्छा, कराची के कल्चर में एक जो पॉजिटिव चीज़ मैंने देखी है, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, हेल्प करने का जज्बा होता है। जैसे अभी बारिश हो रही है ना, बाद जगहों पर मैंने देखा जब पानी खड़ा हो जाए तो इलाके के नौजवान ना वहाँ पे खुद ही रजाकार बन जाते हैं, रास्ता भी बता रहे होते हैं और रहनुमाई भी कर रहे होते हैं।
नाजरीन, मौसम नहायत खुशगवार था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, अगरचे बाद जगह पर पानी रोड्स पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। बहरहाल हम गुफ्तगू करते, मौसम को एंजॉय करते मस्जिद पहुंचे। नमाज असर का वक्त हो चुका था, जमात कायम थी, हम भी जमात में शरीक हुए, नमाज असर अदा की। यहाँ हमारा ये एपिसोड इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले हफ्ते आप मज़ीद गुफ्तगू और इस एपिसोड का बकिया हिस्सा मुलाहज़ा फरमाएंगे।
सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है के दीदार।